بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تحزن، درس نمبر 6۔ آج بھی ایک کمبینیشن درس ہے، اور میں شروع ایک انٹرسٹنگ بات سے کرتی ہوں کہ ہماری ایک بہت پیاری دوست ہیں، اسی گروپ میں ہیں، اور انہوں نے کل مجھے اپروچ کیا، میسج کیا کہ آپی میں چاہتی ہوں کہ آپ اس ٹاپک پر یا اس پہ کوئی بات کریں، اور انہوں نے ایک ٹاپک سجیسٹ کیا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں اسی ٹاپک پہ کام کر رہی تھی، بلکہ جب وہ انہوں نے اپروچ کیا اس وقت بھی میں صرف وہ سوچ رہی تھی کہ میں اس کا نام کیا رکھوں۔ تو انہوں نے جب اپروچ کیا اور انہوں نے وہ الفاظ استعمال کیے، تو انہوں نے اس میں کہا کہ آپ ہی، مجھے لگتا ہے کہ ہم سارا وقت جو ہیں تو اور چیزوں کو بلیم کرتے رہتے ہیں۔ یہ لفظ انہوں نے استعمال کیا، جیسے ہم سیاسی پارٹیوں کو بلیم کرتے رہتے ہیں اپنی ناکامیوں کے لیے اور اپنی قوم کی شارٹ کمنگز کے لیے۔ تو یہ بلیم جو ہے، یہ بہت ایک نگیٹو چیز ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو امپروو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور ان یعنی کہ آئی ایم ویری تھینکفل ٹو مائی فرینڈ کہ انہوں نے یہ کہا، کیونکہ اسی وقت میرے ذہن میں جیسے یہ نام آ گیا کہ لیو ٹو گیم ناٹ ٹو بلیم۔ بلکہ میں نے یہ، مطلب کہ میں اتنی، وہ ہوتا ہے نا کہ آپ خود ہی ایک ڈسکوری کر کے بڑے خوش ہو جاتے ہیں، اور میں نے کہا کہ میں تو اس کے مگ بنا کے لوگوں کو دوں گی، اور میں تو اس کے پوسٹر بنا کے لوگوں کو دوں گی، کیونکہ ایک دم سے جو میں بتانا چاہ رہی تھی اور جو تھیم میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی وہ ساری اس میں آ گئی۔ کہ اگر آپ کسی کو بلیم نہ کریں، اگر آپ اپنے مسئلے مسائل کا الزام کسی کو نہ دیں، تو زندگی جو ہے وہ اتنی خوشگوار ہو جاتی ہے، اور وہ اتنی مزے کی ہو جاتی ہے۔ نوٹ کریں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ زندگی آسان ہو جاتی ہے، ہرگز نہیں، کیونکہ زندگی ایک آسان چیز ہے نہیں، زندگی بائی ڈیزائن کمپلیکیٹڈ ہے۔ اور جتنی ایک اچھی زندگی ہوتی ہے، جتنی ایک خوبصورت زندگی اللہ نے کسی کو دی ہوتی ہے، وہ اتنی ہی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے، اور وہ اتنی ہی شاید مسئلے مسائل سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ جس کی سب سے ٹاپ کی مثال اگر میں آپ کو دوں، تو وہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے ایک مثالی ٹف لائف گزاری تھی۔ یتیم ہو گئے، پھر اپنے کفیل کو انہوں نے کھو دیا، حضرت ابو طالب جو ہیں ان کے دادا فوت ہو گئے ان کے بچپن میں، پھر غربت میں اور سختی میں انہوں نے 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کے ساتھ ان کا نکاح ہوا، اور انہوں نے وہاں پہ جو ہے تو ان کو بعثت ملی، بہت مشکل فیز سے وہ گزرے، اتنا کہ ان کے اپنے رشتہ داروں نے، جو ان کو صادق اور امین کہتے تھے، ان کو سحر زدہ اور مرگی کا مریض، نعوذ باللہ، اور اپیلیپٹک کہنا شروع کر دیا۔ انتہائی ظلم سے، فزیکل تکلیفیں، بھوک اور پیاس، اور اپنے گھر سے دوری، اور پھر فائنلی اپنے پیارے مکہ سے نکالے جانا، اللہ کا گھر جہاں انہیں ہر روز نظر آتا تھا، وہ نہ صرف ان سے چھین لیا گیا، انہیں وہاں سے نکال دیا گیا، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے بھی یہ حکم ہوا کہ آپ کعبہ کی طرف منہ کر کے بھی نماز نہیں پڑھنی، اب آپ منہ بھی اپنا دوسری طرف پھیر لیں، آپ مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ پھر نوزائیدہ بچوں کی، اور پھر 3 سال کے بیٹے کی فوتگی، اور ان کی موت کے غم کو برداشت کرنا، جوان بیٹی کا غم، اس کی مطلب کہ پریگننسی میں ان کی وفات ہونا، بہت ہی یعنی کہ ایک ٹف ترین زندگی۔ اپنے بہترین محبت کرنے والے چچا کو جنگ احد میں کھو دینا، اور پھر جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں، اور آج تک وہ روایات جو ہیں جب ہم پڑھتے ہیں تو سب بلیورز جو ہیں، انسان کا دل پھٹنے لگتا ہے کہ یا اللہ ہم کیا کریں ان کے لیے۔ لیکن وہ یہ دن جو تھے اور یہ سب کچھ جو تھا، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ یہ تو سب پیغمبروں پہ ایسے ہی آیا ہے، اور سب پیغمبر جو ہیں اور ان کی امتیں جو ہیں، وہ اتنے زلزلو، یہ لفظ استعمال ہوا ہے، کہ وہ اتنا زیادہ ہلائے گئے اور اتنا زیادہ شیک کیے گئے کہ وہ پیغمبر پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کہاں ہے۔ تو اللہ پھر کہتا ہے کہ اللہ نصر اللہ قریب، کہ اللہ کی مدد جو ہے وہ قریب ہی ہے۔ تو یعنی ज़िंदगी में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं, और एक अच्छी ज़िंदगी को हम अगर ये समझें कि वो बड़ी आसान है और वो बड़ी पुरासाइश है और वो बड़ी आराम से भरी हुई है, तो आप ज़रा ये जो हमारे जो हम क्या कहें मुआशरे के जो एलीट लोग हैं, आप ज़रा इनके हालात देखें, आप ज़रा इनकी मेडिकल हिस्ट्रीज़ देखें, आप ज़रा इनके बच्चों के हालात देखें, यकीन करें ज़िंदगी बाय डिज़ाइन आसान नहीं है। तो सबसे पहले तो हम इस बात पे एग्री कर लेते हैं कि आसान ज़िंदगी नामी कोई चीज़ नहीं पाई जाती। आसानियाँ हम खुद अपने आप को देते हैं और हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह हमें आसानी दे दे। दूसरी बात, जब हमें कोई मुसीबत दरपेश आती है, जब हमें कोई मसला दरपेश आता है, तो हम उसमें क्या करते हैं, उसमें हमने फौरन से क्या करना है, यानी कि समझें कि हमारे सामने एक अनप्रिडिक्टेबल, एक अनएक्सपेक्टेड रुकावट आ गई किसी काम में, हमें किसी बात पे बड़ा सा गुस्सा आ गया। अब ये जो बात है उसमें कुरान की एक आयत मैं आपके सामने पढ़ती हूँ, जो सूरह आले इमरान की आयत नंबर 134 है, जिसमें गुस्से के बारे में अल्लाह बात कर रहा है कि आप एक रिएक्शन तो आप ये देंगे कि आप यानी बेहतर रिएक्शन ये है कि आप उसे माफ़ कर दें, और उसमें फिर गुस्से की 3 डिग्रीज बताई गई हैं, वल काज़िमीन अल ग़ैज़, और गुस्से को पी जाने वाले। गुस्सा तो आ गया लेकिन उसको फौरन पी गए, उसको घूंट गए, उस गुस्से को दबा लिया। उसके बाद अगला जो फ्रेज़ है आयत में है, वल आफीना अनिन नास, और लोगों को माफ़ करने वाले। आफवा, आयन फे वाव, जैसे हम रमज़ान में कहते हैं ना, अल्लाहुमा इन्नका आफुवुन करीमा तुहिब्बुल आफवा फ़ाफु अन्नी, तू ए अल्लाह तू बड़ा करीम है और माफ़ करने वाला है, तू माफ़ी से मोहब्बत करता है, बस तू हमें माफ़ कर दे। और हम आफवा मांग रहे हैं अल्लाह से। अफवा जो है ये ऐसी माफ़ी है जिसमें जो हमारा आमाल नामा है उसमें से भी गुनाह जो हैं वो मिट जाते हैं और एक नया सफ़ा शुरू हो जाता है। जैसे कुरान में है ना, वाफू वस्फहू, के माफ़ करो और एक नया सफ़ा शुरू करो, वस्फहू बस दरगुजर करके भूल जाओ। तो ये वो माफ़ी है, एक तो है गुस्से को दबा लेना जिसके लिए आयत में है वल काज़िमीन अल ग़ैज़, अगला है वलआफ़ीना अनिन नास, और लोगों को माफ़ कर देने वाले, उनके कसूर भूल जाने वाले। उससे आगे बताया गया है वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला तो मोहब्बत करता है एहसान करने वालों से, यानी एहसान का दर्जा जो है, जो कि तमाम पैगंबरों का और वलियों का और इवन शुहदा के लिए कहा गया है कि ये एहसान के दर्जे पे फाइज हैं, ये वो बेहतरीन दर्जा है इंसानियत का जो अल्लाह ताला ने एक इंसान को देना होता है, तो वो माफ़ी से भी ऊपर है। और वो क्या दर्जा है, तो इसकी इंटरप्रिटेशन ये है कि जो जिसके साथ ज़्यादती हो जाए तो वो ज़्यादती करने वाले के साथ अच्छा करे, और सबसे ज़्यादा अच्छा ये है कि वो ज़्यादती करने वाले के हक़ में दुआ करे। बहुत मुश्किल बात है, बहुत मुश्किल बात है, मैं ये नहीं कर सकती। और आपको अगर ये सुन के एक मायूसी फील हो रही है कि एहसान के दर्जे पे कोई कैसे फाइज होगा, तो इट इज़ कम्प्लीटली नेचुरल, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। लेकिन आयत जहन में रखें, और ये आयत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आयशा को बताई थी। एक दफ़ा वो किसी बात में गुस्से पे आई थी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पेशानी पे हाथ रखे, या रिवायात में ये भी है कि उनकी नाक पे हाथ रख के कहा था कि ए ओवैश गुस्सा ना किया कर, और ये आयत पढ़ने को उन्हें कही थी, वल काज़िमीन अल ग़ैज़ वल आफ़ीन अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, सूरह आले इमरान की आयत नंबर 134। ठीक है जी, उसके बाद एक और आयत है सूरह अशूरा की, जो सूरत नंबर 42 है कुरान की, इसकी आयत नंबर 40 है, व जज़ा ओ सैयअतु सैयअ मिस्लुहा, और बदला एक बुराई का वैसी ही बुराई है। अल्लाह ताला ने कुरान में बदला लेने को जायज़ करार दिया है, अल्लाह ताला ने कुरान में हमें बराबर का बदला लेने की इजाज़त दी है। लेकिन बदला लेने को नापसंद क्यों किया गया है, क्योंकि इंसान जो है ये बड़ा कमज़र्फ है, ये बड़ा थुड़दिला है, और अल्लाह ताला ने इंसान को डिज़ाइन करते हुए उसको पता है कि इसके डिज़ाइन में ये है कि ये इंसाफ नहीं कर सकता, और अगर इसको मौका मिल जाए अपने ऊपर की गई ज्यादती का बदला लेने का मौका अगर इसको मिल जाए तो फिर ये ज्यादती करेगा, फिर ये उस ज्यादती का बदला नहीं लेगा, ये डबल ट्रिपल ज्यादती करेगा और ये गुनहगार होगा। तो बदला लेने की इजाज़त दी गई है लेकिन उसे उससे ज़्यादा बेहतर ऑप्शंस हमें कुरान में दी गई हैं। तो इस आयत में है वजज़ा उसैया सैयतु मिस्लुहा फमन अफा, बस जिसने माफ़ कर दिया, अफवा वही लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है, वो असलहा और इस्लाह कर ली। इस्लाह करना, ये मैं आपको आगे बताऊंगी कि एक ज्यादती के बाद इस्लाह जो है, हमारी इस्लाह क्या है और ज्यादती करने वाले की इस्लाह क्या है, वो फ़अजरुहु अलल्लाह, तो उसका अजर तो अल्लाह के ज़िम्मे है। यानी अल्लाह कहता है अगर तुमने दुनिया में ही बदला ले लिया तो इसकी इजाज़त तुम्हें है, लेकिन अगर तुमने माफ़ कर दिया और तुमने इस्लाह की, सुलहा बेहतरी की, चीज़ को ठीक कर दिया, फसाद से परहेज़ किया, सलाहियत इस्तेमाल की, सुलह करा दी, अगर तुमने ये किया फ़अजरुहु अलल्लाह इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह ला युहिब्बुल ज़ालिमीन, ज़ुल्म करने वालों को दोस्त नहीं रखता। और ज़ुल्म करने से मुराद ये है जो शायद ज़्यादती करते हैं या ज़्यादती का बदला उस ओरिजिनल ज़्यादती से ज़्यादा ले लेते हैं। ठीक है जी। फिर इसी सूरत की आयत नंबर 48 है वइन्ना इज़ा अज़ख़नल इंसान, और बेशक जब हम इंसान को चखाते हैं, मिन्ना अपनी तरफ से, रहमतन कोई भी रहमत, फ़रहा बिहा वो फूल जाता है उस पर, वो खुशियां मनाता है उस पर, फ़राहा खुशियां मनाना, इतराना। एक है फलाह जो है हमेशा की बेहतरी, और फलाह का लफ्ज़ आप बोल के अपने आप को फील करें ना, इसमें एक गहराई है, ये एक डीप लफ्ज़ है, इसमें लाम है जो डीप है, सुपरफिशियल लफ्ज़ नहीं है ये। फलाह मीन्स हमेशा की कामयाबी, फराहा ये एक सुपरफिशियल लफ्ज़ है, अरबी भी कमाल की ज़बान है, मेरी अपनी ज़बान तो नहीं है, अल्लाह करे मुझे पूरी की पूरी आ जाए। फराहा इट्स अ सुपरफिशियल वर्ड, राहा हाँ, और ये है सुपरफिशियल खुशी, बाजे गाजे खुशियाँ मनाना, इतराना, लोगों के सामने शोइयाँ मारना, रियाकारी करना। तो जब हम इंसान को कोई रहमत का मज़ा चखाते हैं तो वो फराहा करता है, वो उस पर इतराता है। वह इन तुसिब हम से ये आतो, और अगर उसे पहुंच जाए कोई मुसीबत, तुसिब हम और पहुंचे उसे कोई मुसीबत, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हम पहुंचाते हैं उसको मुसीबत, और अगर पहुंचे उसको कोई बुराई, बिमा कद्दमत एदी हिम बसबब उसके जो उसके अपने हाथों ने आगे भेजा है अपने अमल की वजह से, फ़इन्नल इंसाना बस बेशक इंसान, कफूरा वो बड़ा शुक्र ना शुक्र गुज़ार है, कफूरा हाँ सबसे बढ़ के ना शुक्र गुज़ार। तो फिर इंसान उन अच्छाइयों को भी भूल जाता है जिस पे वो बड़ी खुशियां मनाता था और बड़ा इतराता था और बड़ा फूलता था, फिर वो कहता है ये अल्लाह ने हमारे साथ क्या किया, ओहो हमारे साथ तो बड़ी ज़्यादती हो गई। ठीक है जी। तो ये सारा बैकग्राउंड मैंने आपके लिए बनाया है और ये आयात मैंने आपको इसलिए पढ़ाई हैं कि कुरान जो है वो हमारे इस एटीट्यूड को बड़ी अच्छी तरह समझता है कि ये इंसान जो है ना, हज़रत इंसान, ये बड़ा ही नाशुक्रा है और ये बड़ा ही थुड़ दिला है और इसे फौरन गुस्सा आ जाता है और गुस्से में फिर ये अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, और अगर इसको बदला लेने की इजाज़त दे दी जाए तो इसने तो अगले का साथ फिर ऐसी की तैसी कर देनी है उसकी, ये जो है ये फिर हुदूद नहीं पहचानता, ये अपने साथ होने वाली ज्यादती से भी कहीं ज़्यादा ज्यादती करेगा और जुल्म करेगा। तो अब देखें, एक तो ये बात है ना, मैं आपको अब यहाँ पे ये समझाना है कि जब आपके साथ कुछ होता है, जब हमारे साथ कोई बुराई होती है या हमारे साथ कोई ज्यादती होती है, तो कुरान की रूह से अल्लाह ये कह रहा है कि एक तो ये है कि वो बुराई या ज्यादती जो है वो भी अल्लाह ही की तरफ से है और वो हमारे ही किसी अमल का नतीजा है। बिल्कुल जैसे मुझसे सवाल करने वाली जो हमारी दोस्त हैं, उन्होंने ये कहा था कि आप ही हमारी कौम अपने आप को तो ठीक करे ना पहले, फिर वो सियासतदानों को इल्ज़ाम दे और फिर वो लोगों की बुराइयां करे, फिर वो कहे कि जी ये हुआ है वो हुआ है, हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, तो हम तो खुद ही इतने कमज़ोर लोग हैं, झूठे लोग हैं, बेईमान लोग हैं, सुस्त लोग हैं, पैसे से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, सिफारशी हैं, राशि हैं, हम बदकार हैं, और हम अपने हुक्मरानों को बैठ के रोते हैं, हम उन्हें इल्ज़ाम देते हैं। तो ब्लेम जो है ना, इल्ज़ाम नहीं देना, सबसे पहले बैठ के सोचना है, जो कुरान में हज़ारों, मैं कहती हूँ कितनी आयात हैं, सैकड़ों आयात हैं, अफलाता खिलून, کیا تم عقل نہیں استعمال کرتے؟ افلا تدبرون، کیا تم تدبر نہیں کرتے؟ افلا تفکرون، کیا تم تفکر نہیں کرتے؟ تو اگر آپ توحید کی سمجھ اگر آپ کو ہے، جو ہمارا منتہائے مقصد ہے قرآن پڑھنے کا، یہ لا تحزن آپ کو پڑھانے کا، یہ مقصد سارا جو ہے وہ توحید کو سمجھنا ہے. دیکھیں توحید پہ ہم ایمان رکھتے ہیں لیکن توحید کو ہم سمجھتے نہیں ہیں. ایک ہندو یوگی ہے، اوشو نام ہے اس کا، دیکھ لیں آپ اس کو کہیں گوگل پہ. ویسے وہ بڑا مداری تھا لیکن اس نے ایک بڑے پتے کی بات کی تھی اور وہ انگلش میں لیکچر دیتا تھا. ایک لیکچر انگلش میں دیتے دیتے اس نے رک کے اردو میں کہا تھا، آپ ایسے اندیکھے خدا کو کیسے مان سکتے ہیں جسے آپ جانتے نہیں ہیں. اور یہ سوال میرے ذہن میں بالکل اٹک گیا کہ واقعی اللہ سے محبت کا دعویٰ تو مجھے ہے لیکن میں اللہ کو کتنا جانتی ہوں، میں اللہ کے کام کتنی خوشی سے ایکسیپٹ کرتی ہوں اور کتنا میں سمجھتی ہوں اس کے امر کو. تو یہ بات جو ہے توحید کی سمجھ انسان کو صرف مصیبتوں اور آلام میں گھر کے آتی ہے. یہ جو ہمارے استاد القرنی جن کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اس میں یہ چیپٹر ہے جس میں ہے کہ توحید، یہ آیت نمبر، یہ سوری پیج نمبر 242 پہ انہوں نے یہ چیپٹر ڈسکس کیا ہے کہ توحید کی سمجھ ہمیں صرف حزن میں اور مصیبتوں میں اور آلام میں گھر کر آتی ہے. اور اگر آپ توحید پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان، انہوں نے سمجھنے کی بات بعد میں کی ہے، اگر جیسے ہم سب ایمان رکھتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم سب سے پہلے تو اس کو فوراً معاف کر دیں گے جس نے زیادتی کی ہے، اگر ہم توحید پر ایمان رکھتے ہیں. کیونکہ اگر ہمارا توحید پہ ایمان ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ زیادتی جو ہے یہ میرے مقدر میں تھی، اللہ نے لکھی ہوئی تھی اور ان کے ہاتھوں میرے ساتھ ہوئی ہے، لیکن میں اللہ سے دعا کروں گا اور میں اسے معاف کر دیتا ہوں. تو وہی بات ہے کہ ہم کیا کریں گے، ہم غصے کو دبا لیں گے، وکاظمین الغیظ، اور اس سے اگلا درجہ پھر کیا ہے، ہم ان لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیں گے، والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اور ہم اللہ سے امید رکھیں گے کہ ایک دن ہم احسان کے درجے پر فائز ہو جائیں گے. یہ بات جتنی مشکل لگتی ہے یقین کریں اتنی ہی مشکل ہے، لیکن آگے میں آپ کے لیے یہ ایکسپلین کروں گی، ٹھیک ہے جی. اچھا، دوسرا فائدہ کیا ہوگا جب ہم توحید کی پوری سمجھ رکھیں گے اور ہم ایک مصیبت میں اور ایک غم کی کیفیت میں اور ایک مسئلے مسائل میں ہم کسی کو بلیم نہیں کریں گے، ہم یہ نہیں کریں گے کہ افلا ان کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، یہ جو ہے نا انہوں نے یہ کام کیا ہے، انہوں نے ہمارا اس طرح کا کام خراب کیا ہے. تو ہم تقدیر پر ایمان لے آئیں گے. اور بزرگوں کا یہ قول ہے کہ تقدیر کو ماننے والا اور تقدیر کو نہ ماننے والا، ان کا فرق ایسا ہے جیسا انسان اور جانور کا ہے، بلکہ جانور تو پھر بھی تقدیر کو مانتا ہے. تو تقدیر کو ماننے والا اور تقدیر کو نہ ماننے والے کا فرق جو ہے وہ جاندار اور بے جان کا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر بھی وہ بزرگ کہتے ہیں کہ بے جان بھی تقدیر کو مانتا ہے. تو گویا تقدیر کو نہ ماننے والا جو ہے اس کو جو شر البریہ کہتے ہیں، کہ سب سے برا جو ہے شر اور سب سے بری کوالٹی کا انسان جو ہے وہ ہے جو تقدیر کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے جی. تیسرا فائدہ کیا ہوگا جب ہم توحید پر پوری طرح ایمان رکھتے ہیں اور توحید کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور جب ہمارے ساتھ کوئی زیادتی ہوتی ہے یا کوئی مسئلہ ہمیں درپیش آتا ہے تو ہم کسی کو اس کا بلیم نہیں دیتے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم آپ کے لیے یہ بلیم کسی کو نہیں دے رہے ہیں، ہم توحید سمجھنا چاہتے ہیں. تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا، ہم اپنے نقصان میں صبر کرنے والے بن جائیں گے. شروع میں تو یہ صبر جو ہے وہ ہمارا ایک لیک آف انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے ہوگا. جب ہم یہ، جیسے کسی نے اگر ہمیں کوئی سخت گالی دے دی، کوئی بری بات کر دی جو ہم نہیں ڈیزرو کرتے تھے، ٹھیک ہے جی، لیکن ہم یہ سوچنے لگے کہ یا اللہ یہ بھی تیرا بندہ ہے، اس نے بھی تیرے ہی حکم کے تحت یہ جی رہا ہے، تیرے حکم کے باہر تو نہیں ہے یہ، اس نے شیطان کی بات مانی اور اس نے ایسی گندی گالی مجھے دے دی، تو یا اللہ میں تیری خاطر اسے معاف کرتا ہوں، میں اس کو کچھ نہیں کہتی، میں چپ ہو جاتی ہوں. تو یہ صبر کا درجہ ہے. اور قرآن میں کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ نے اپنی معیت کا وعدہ کیا ہے کہ میں تو صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. کوئی آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی کسی نے بہت برائی کی ہے، आपके पीठ पीछे बुराई की है, लोगों में आपको बदनाम करने की कोशिश की है, आपकी नौकरी में, आपकी जॉब में आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, किसी ने आपको माल के मामले में धोखा दिया है, ये सब किस्म की ज्यादतियाँ, वो ज्यादतियाँ जो अक्सर हम कहते हैं कि हम ये नहीं डिज़र्व करते, देखिए हमने तो इनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाया, आखिर ये हमें क्यों इतना नुकसान पहुँचा रहे हैं, लेकिन अल्लाह की खातिर आप ये कहें कि या अल्लाह ये भी तेरा बंदा है और इससे भी तुझे इतनी ही मोहब्बत होगी जितनी मुझसे है, तो तेरी खातिर जो है मैं इसको कुछ नहीं कहती। ये पहली सीढ़ी है, ठीक है जी, ये हमने सब्र कर लिया। तो अब आपको मैंने बताना है सब्र और शुक्र का ताल्लुक, क्योंकि कुरान में जगह जगह ये है कि अल्लाह ताला के शायद के ये शुक्र करने वाले बन जाएं और फिर सब्र के तो अपने दर्जे हैं। तो सब्र और शुक्र बड़ी कीमती क्वालिटीज़ हैं, और सब्र और शुक्र दोनों हम कैसे हासिल करते हैं, जब हम किसी को अपने मसले के लिए, अपनी मुसीबत के लिए ब्लेम नहीं करते, जब हम, वही मैंने आपको कहा है कि लिव टू गेम एंड नॉट टू ब्लेम, यानी कि ज़िंदगी जो है उसे एक गेम की तरह लें, उसे लाइटली लें, उसे एक स्टेज से अगली स्टेज तक कामयाबी में हासिल करने के लिए लें, उसे ब्लेम करने के लिए, जब आप ब्लेम करेंगे तो आपकी ज़िंदगी आपके लिए बोझ बन जाएगी, ठीक है जी। तो शुक्र और सब्र के लिए पहला दर्जा जो है वो शुक्र उला है, यानी पहला शुक्र, शुक्रिया कहना। और शुक्रिया जो है हम अच्छी चीज़ पर हम शुक्र कहते हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जब हमारे साथ कोई अच्छा मामला होता है, जब हमारा कोई काम अच्छी तरह हो जाता है, बच्चे का एडमिशन हो गया, हमारा एडमिशन हो गया, हमें नौकरी मिल गई, हमें तरक्की मिल गई, या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है, बीमारी से शिफा मिल गई, या अल्लाह तेरा बड़ा शुक्र है। दूसरा लेवल जो है वो है सब्र उला, यानी कि एक मुसीबत में सब्र करना, जो भी हमें मसला या मुसीबत दरपेश आए या जो हमें मसला या मुसीबत नज़र आ रहा हो उसमें सब्र करना। तो अच्छी चीज़ पर शुक्र करना और नेगेटिव जो हमें नज़र आते हैं उन पे सब्र करना, ये तो दोनों सब्र और शुक्र हैं। तीसरा दर्जा जो है, जो वो एहसान का दर्जा है ना, उसको शुक्र उखरा या सब्र अज़ीम कहते हैं। वो क्या है? वो है मुसीबत पर शुक्र करना। अब दोबारा से मुझे पता है आप जैसे कि किसी अपने साथ इंतहाई बुरा करने वाले के हक में दुआ करना जितना मुश्किल है और उसके साथ अच्छा करना जितना मुश्किल है, उतना ही मुसीबत पर शुक्र करना मुश्किल है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको सूरह आले इमरान की एक आयत सुनाती हूँ जो उस्ताद अलकरनी ने अपने इसी किताब में लिखी है, और बहुत खूबसूरत ये एक आयत है जो मुहाजरीन के बारे में लिखी गई है। फस्तजाब लहुम, पस कबूल कर लिया उनके लिए रब्बहुम उनके रब ने, अन्नी ये के मैं, ला उदीउ मैं नहीं ज़ाया करता, अमला आमिलिन किसी भी अमल करने वाले का अमल, मिनकुम तुम में से, मिन ज़करिन औ उनसा चाहे वो मर्द हो या औरत हो, बादुकुम मिन बादिन तुम में से बाज़ों के औलाद हैं, बाज़ों में से हैं, फल लजीना पस जो लोग, हाजरू हिजरत की उन्होंने, व उखरिजू और वो निकाले गए, मिन दियारहिम अपने घरों से, व ऊजू और अजियत दिए गए वो, फी सबीली मेरी राह में, व कातलू और वो लड़े, व कुतिलू और वो मारे गए, लउकफ़िरन अनहुम और उनके साथ लड़ाई की गई, लउकफ़िरन अनहुम अलबत्ता ज़रूर मैं दूर कर दूँगा उनसे, सैयातिहिम उनकी बुराइयाँ, वलउदखिलन्नहुम और अलबत्ता ज़रूर मैं उन्हें दाखिल करूँगा, जन्नातिन तजरी वो बागात जिनके नीचे जारी हैं, मिन तहतिहल अनहार नहरें, सवाबम मिन इंदिल्लाह बहुत बेहतरीन जगह है अल्लाह की तरफ से, सौब जो है ये लिबास को कहते हैं और एक मकाम को कहते हैं, वल्लाहु और अल्लाह, इंदहु उसी के पास, हुस्नु सवाब बेहतरीन ठिकाना है। तो देखिए इसमें जो ज़्यादतियाँ बयान की गई हैं वो डेफिनेटली कुफारे मक्का की वजह से थी। फल्लज़ीना हाजरू, बस जो लोग हिजरत की उन्होंने, हिजरत क्यों की? मारते पीटते थे, जुल्म करते थे, उनके घर जलाते थे, बच्चों को मार देते थे, उनको खाना पीना मुकाता कर दिया था, सब कुछ ख़त्म। वह उखरिजू मिन दियारहिम निकाले गए अपने घरों से, किसी ने निकाला होगा, हैं जी, وعوزو، اور وہ اذیت دیے گئے، فزیکل اذیت دیے گئے، ان جلتی ریت پہ لٹایا، نیزے ان کے پیٹوں میں گھونپے، پھانسیاں دی انہیں، فی سبیلی، میری راہ میں، وقاتلو وقتلو، اور وہ لڑے اور ان کے ساتھ لڑائیاں ہوئیں۔ اللہ وعدہ کرتا ہے اور اللہ قسمیں کھا کے کہہ رہے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ، ضرور میں ان سے دور کروں گا ان کی برائیاں، وَلَأُدْخِلَنَّ، اور ضرور میں انہیں داخل کروں گا جنتوں میں۔ یہ جو ہیں یہ شکر عظیم اور صبر عظیم کے درجے ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ وہ زیادتیاں ہوئیں اور وہ اللہ کی راہ میں ثابت قدم رہے اور انہوں نے ہجرت کی اور وہ گئے اور انہوں نے ایک اور سٹیٹ بنائی، تو اللہ نے ان کی کون سی برائی نہیں دور کی ان سے، اور اللہ نے کون سا ٹھکانہ انہیں دنیا میں ہی نہیں دے دیا، ہیں جی، چند سو سال میں وہ یورپ پہ حکومت کر رہے تھے، ہیں جی، آج تک ان حکومتوں کے آثار وہاں موجود ہیں، اور مسلمانوں کے نام سے ان کے اوپر لرزہ تاری ہو جاتا ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ جنہوں نے ہجرتیں کی تھیں انہوں نے پھر جو اللہ نے ان کو جو باؤنٹیز دی ہیں اور اللہ نے انہیں جو مقامات دیے ہیں، جو درجے دیے ہیں، کیوں؟ انہوں نے کبھی کسی کو بلیم نہیں کیا، کسی کو بھی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی، حضرت فاطمہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مشہور واقعہ ہے کہ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل نے یا ان کے کسی اسسٹنٹ نے ان کے اوپر لا کے اوجڑی ڈال دی اونٹ کی، تو حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک دھوتی جاتی تھیں اور بددعائیں دیتی تھیں ان کو، ان لوگوں کو، ابو جہل کو اور ان لوگوں کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا، فاطمہ یہ جانتے نہیں ہیں۔ اس سے بہترین مثال کسی کو بلیم نہ دینے کی میں نے نہیں دیکھی آج تک، میں نے بڑی ورکشاپس اٹینڈ کی ہیں، میں نے بڑے سائیکالوجسٹ کے ساتھ باتیں کی ہیں، اس سے بہترین مثال نہیں ہے فاطمہ، وہ جانتے نہیں ہیں۔ الٹیمیٹ انڈرسٹینڈنگ، بلیم نہیں دینا، ان کا مسئلہ سمجھنا ہے اور ان کا مسئلہ سمجھ کے انہیں معاف کر دینا ہے، کیونکہ محنت ہم صرف اپنے اوپر کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو چینج کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو امپروو کر سکتے ہیں، کسی اور کا ذمہ اللہ کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا، اللہ کہتے تھے کہ آپ کے اوپر صرف پہنچا دینا ہے، وما علینا الا البلاغ، ہم پر اس سے زیادہ نہیں ہے کہ ہم پہنچا دیں، باقی ایمان دینا اور نہ دینا اور درجے دینا وہ اللہ کے حوالے ہے، تو بلیم تو بالکل آؤٹ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اگلا فائدہ، اب میں نے آپ کو تین فائدے بتائے کہ جب آپ مصیبت میں صبر کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ معافی کے درجے پہ فائز ہوتے ہیں اور آپ غصہ دبا لیتے ہیں، اور بہت قیمتی درجہ ہے یہ۔ دوسرا پھر یہ ہے کہ آپ کا تقدیر پہ ایمان مضبوط ہو جاتا ہے اور آپ ایک بہتر انسان بن جاتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ آپ کو صبر کا اور شکر عظیم کا درجہ نصیب ہوتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے بڑے بڑے وعدے کیے ہیں۔ چوتھا کیا ہے، وہ بہت بڑا فائدہ ہے، کہ آپ کو اپنی خامیوں کا اور اپنی کمیوں کا احساس ہوتا ہے۔ یہ سائیکلوجیکل فائدہ جو ہے نا جی، یہ کسی ایٹیٹیوڈ میں نہیں ہے، انسان جو ہے وہ بڑا سخت چیز اللہ نے بنایا ہے، اور یہ اپنی کمیوں کا اور اپنی غلطیوں کا احساس جو ہے اس کو بالکل نہیں ہوتا، کسی اور کے کہنے سے کبھی ہو ہی نہیں سکتا، یہاں تک کہ اس کو اپنی کمی کا احساس خود ہو، جیسے کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 165 ہے، اولم ما اصابتکم، کیا اس سے پہلے پہنچی تھی تمہیں مصیبتن، کوئی مصیبت، قد اصبتم، تحقیق پہنچی تمہیں، مثلیہا، اسی جیسی، قلتم، تم نے کہا، ان ھذا، یہ کہاں سے آ گئی، قل، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہوا من عند انفسکم، یہ تو تمہاری اپنی جانوں میں سے ہے، تمہارے اپنے اندر میں سے ہے، ان اللہ، بے شک اللہ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس کی اگلی آیت ہے، وما اصابکم، اور جو تمہیں پہنچی، یوم التقى الجمعان، جس دن دو جماعتیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئیں، فبإذن اللہ، تو یہ اللہ کے اذن سے، وليعلم المؤمنین، تاکہ وہ معلوم کر لے مومنوں کو، وليعلم الذین، اور تاکہ وہ معلوم کر لے ان لوگوں کو، نافقوا، جو منافق ہیں، وقیل لهم، اور انہیں کہا گیا، تعالوا، آ جاؤ، قاتلوا فی سبیل اللہ، ہم لڑیں اللہ کی راہ میں، او ادفعوا، یا ہم اسے دور کر دیں، قالوا، انہوں نے کہا، لو نعلم قتالا، اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ ہمیں لڑنا ہوگا، لتبعناکم، हम ज़रूर तुम्हारी बात मानते, हम तुम्हारी पैरवी करते। यानी वो पीछे रह गए, लेकिन उन्होंने ये कहा हुम लिल कुफ्र यौमा इज़िन, उस दिन ये कुफर के अक़रबो ज़्यादा करीब थे, मिन हुमुल ईमान ईमान से। यकूलूना, ये कहते थे बे अफवाहिहिम, अपने मुँह से, मा लैसा फ़ी क़ुलूबिहिम, जो इनके दिलों में नहीं था। वल्लाहु आलमो, और अल्लाह खूब जानने वाला है, बिमा यक्तुमून, जो ये छुपाते हैं। तो यानी उस दिन जब तुम्हें कोई मुसीबत पहुंची, तो वो तुम्हारे, ये जंगे उहद की बात है, कि यानी कि मुसलमानों को ये कहा जा रहा है कि तुमने एक बड़ा नुकसान सस्टेन किया है और कुफार ने वाकई तुम्हें नुकसान पहुंचाया है। हज़रत हमज़ा शहीद हो गए हैं, 70 मजीद सहाबा शहीद हो चुके हैं, बहुत बड़ा नुकसान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत की अफवाह उड़ी है, उनके दांत शहीद हो गए हैं, वो ज़ख्मी हो गए हैं, मुसलमानों के दिल फटे हुए थे। इस वक्त अल्लाह ये भी कह सकता था कि तुम कुफार को बददुआएं दो, और तुम कुफार को जाके मारो पीटो, और तुम कुफार के बच्चों को कत्ल कर दो। अल्लाह ने क्या कहा है, ये तुम्हारे अपने पास से और ये अल्लाह के इज़न से। क्यों? क्योंकि अल्लाह मालूम करना चाहता था कि ईमान वाला कौन है और मुनाफिक कौन है। और मुनाफिक वो है जो उस दिन जंग से पीछे रह गया और उसने कहा कि ओहो, अगर हमें पता होता कि आपने लड़ना है तो हम तो आपके साथ चले ही जाते। कितनी ये बड़ी बात है और कितनी बड़ी ये एक साइकोलॉजिकल टिप है कि जब आपको एक मुसीबत दरपेश आती है, और ये भी जंगे उहद जैसी मुसीबत की मिसाल दे के कहा गया है, तो किसी को ब्लेम ना दें, आराम से बैठ के सोचें कि जी आखिर मसला क्या था, आखिर ऐसा हमारे साथ क्यों हुआ। जितनी, यानी कि ये तो 1450 साल पहले की बात है ना, जितनी भी साइकोलॉजिकल रिसर्च हुई है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की रिसर्च हुई है, मैनेजमेंट की रिसर्च हुई है, बिजनेस की रिसर्च हुई है, और यकीन करें मैंने बहुत स्टडी की है, जो बड़े बड़े गुरु हैं इस एरिया के, ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट के और मैनेजमेंट के और टाइम मैनेजमेंट के स्पेशली, ये गुरु जो हैं इनकी मैंने वर्कशॉप्स अटेंड की हैं। और मैं आपको, यानी कि मैं दावे से आपको कह सकती हूँ कि इससे बेहतर मिसाल हो ही नहीं सकती। जब अल्लाह ने एक मिसाल दी है तो बस वही हमारे लिए काफ़ी है। क्योंकि अब मैं आपको एक बड़ी पते की बात बताऊँगी, जिसकी वजह से ये सबक थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, वरना मुझे इसका पार्ट टू बनाना पड़ेगा। तो इसी में मैं आपको वो बात बता देती हूँ कि दूसरों को माफ़ करके, ना कि ब्लेम करके, आप एक कामयाब इंसान बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब कोई ज़्यादती हो जाती है तो ये एक कुदरती अमर है। अब ये मैं साइकोलॉजी बोल रही हूँ, ठीक है जी, मैनेजमेंट और इसकी स्ट्रेटजीज़ हैं ये, कि जब कोई बड़ा नुकसान पहुँचता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी इंडिविजुअल को, तो एक कुदरती अमर है, अगर वो किसी और को इल्ज़ाम देगा तो वो ख़ुद कभी नहीं इम्प्रूव कर सकेगा। वो वहीं बैठ के रोता रहेगा, इल्ज़ाम देता रहेगा, यहाँ तक कि वो जिसको इल्ज़ाम दे रहा है वो शायद आके आखिर में उसे ही खा जाए, उसे ही नौकरी से निकाल दे, उसी को ख़त्म कर दे, उसी के ऊपर केस कर दे, उसकी ऑर्गेनाइजेशन को हज़म कर जाए। लेकिन अगर जब वो नुकसान खाता है तो वो आराम से अपने दरवाजे बंद करके बैठ जाए और एक दिन, दो दिन, एक हफ़्ता ठंडे दिल से सोचे आखिर हम में क्या कमी थी कि हमें ये नुकसान पहुँच गया। और जब वो कमी डिस्कवर कर ले, तो ये हो ही नहीं सकता कि वो कमी दूर ना करे, क्योंकि उस वक्त वो जज्बा इंतकाम होता है, उसमें एक इंसल्ट की फीलिंग होती है, उसमें हारने का एक जज्बा होता है, और ये बहुत बड़े मोटिवेटर्स हैं। जब इंसान को ये पता चल जाए कि अगर मैंने अपनी ये कमी दूर कर दी तो मैं तो अपने ये जिसने मुझे पिछाड़ा है मैं इससे बेहतर हो जाऊँगा, तो इससे ज़्यादा बड़ा मोटिवेटर हमें क्या चाहिए। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में इससे बेहतर स्ट्रेटजी कोई नहीं है। तो आज की आखिरी बात मैं आपको बता देती हूँ कि ये रिएक्शंस हैं इंसान के, और जो लोग मेरे लेक्चर सुनते रहते हैं उनको यकीनन ये पता होगा, ये स्टीफन कवी के क्लासिफिकेशन है जो मैं आप अक्सर पढ़ाती हूँ, कि जब आपको कोई मसलन एक सिचुएशन आप लें कि किसी ने आपको नुकसान पहुँचाया, मसलन किसी ने आपको गाली दी, दोबारा से मैं यही लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ, तो तीन किस्म के रिएक्शंस हैं जो इंसान देते हैं, और तीनों रिएक्शन इसी में इंक्लूडेड हैं, यानी इससे बाहर कोई और रिएक्शन नहीं है। नंबर पहला रिएक्शन जो है, नंबर एक, वो है हम इनएक्टिव रहते हैं, हम रिएक्ट नहीं करते, हम एक्शन नहीं लेते और हम चुप रहते हैं। लेकिन मसला क्या होता है, इससे हमारे अंदर गुस्सा भर जाता है, हमारे अंदर जिसने हमें गाली दी होती है उसके बारे में नेगेटिव फीलिंग्स इतनी भर जाती हैं कि हम, एक तो हमें अपने डिफेक्ट्स नहीं नज़र आते, दूसरे हम उनसे नफरत करने लगते हैं, तीसरे चूंकि हमने उन्हें कुछ नहीं कहा होता, तो जब हम जाके अपनी वर्क प्लेस में पहुंचते हैं या अपने घर में पहुंचते हैं तो हम घर वालों से लड़ते हैं, अपने वर्क प्लेस में लोगों से लड़ते हैं, अपना नुकसान करते हैं, अपना वो गुस्सा दबा के, ज़बरदस्ती दबा के, ठीक है जी। इन एक्टिविटी जो है ये बहुत बुरा रिस्पॉन्स है। तो फिर क्या रिएक्शन देना अच्छा रिस्पॉन्स है? जब आपको कोई गाली दे तो रिएक्शन तो ये है कि आप भी उसे गाली दें। मसला क्या है? जब किसी ने, जैसे हम कहते हैं ना, स्कूल में भी कहते थे, यार अगर तुमने भी ऐसा ही बुरा किया जैसा उसने किया है तो उसमें और तुम में फिर फ़र्क क्या है? ये बड़ी एक पते की बात है जो बच्चों ने पता नहीं कहाँ से सीखी है, आज भी बच्चे ऐसी बातें करते हैं, तो हमने भी कहीं से सीखी हुई थी। तो बात ये है कि अगर उन्होंने गाली दी है तो उन्होंने मुनाफ़त का सबूत दिया है, तो हम भी मुनाफिक बन जाएं उनको रिएक्शन देने के लिए। अभी हमने पढ़ा है, कुरान में भी है बराबर का बदला लेना, लेकिन क्या हम बराबर का बदला ले सकते हैं? क्या हम किसी को, यानी सपोजिंग किसी ने खुदा ना खास्ता हमें माँ की गाली दी है, तो हम बदला लेने के लिए उनको अगर माँ की गाली दें और इमेजिन करें कि उनकी माँ जो हैं वो फौत हो चुकी हैं, हमने तो ज़्यादा गुनाह कमा लिया ना, हमने एक मरहूमा मोमिना को गाली दी और उन्होंने हमारी ज़िंदा माँ को गाली दी थी, तो हम तो ज़्यादा गुनहगार हो गए। बहुत, यानी रिएक्शन जो है इट इज़ नॉट द आंसर। जब हम और दूसरी नुकसान रिएक्शन में क्या है, सपोजिंग उन्होंने हमें कहा है कि तुम झूठे हो और हम उनको आगे से कहें तुम भी झूठे हो, तो उन्होंने जब बात शुरू की थी तो उनके जहन में ये था कि ये झूठा है, जब वो हमारी बात सुनेंगे तो उनकी बदगुमानी कन्फर्म हो जाएगी, वो कहेंगे कि हाँ लोग तो कहते हैं कि ये बकवासी है, ये झूठा है, वाकई ये झूठा है। अपनी बात पे वो नहीं सोच रहे होंगे कि उन्होंने क्या कहा है। तो रिएक्शन एक तो है इनएक्शन, जो बहुत ही बुरा रिस्पॉन्स है, दूसरा है रिएक्शन जो उससे भी बुरा रिस्पॉन्स है, तीसरा रिस्पॉन्स जो सारे हमारे मैनेजमेंट के गुरुज और सारे साइकोलॉजिस्ट हमें सिखाते हैं वो है प्रो एक्शन। प्रो एक्शन का मतलब है कि किसी भी एक्शन का जवाब इस तरीके से देना कि उसमें से एक पॉजिटिव रिजल्ट निकले, यानी कि इसका मतलब ये है कि जब वो आपको गाली दें तो आप आगे से उनको ये कहें कि हुजूर मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आपने मुझे इतनी बुरी गाली दी। ये दोबारा से मैं आपको कह रही हूँ, ये करना बहुत मुश्किल है, ये उतना ही मुश्किल है जितना जुल्म करने वाले के और ज़्यादती करने वाले के हक़ में दुआ करना है, ये उतना ही मुश्किल है जितना सब्र जमील या सब्र अज़ीम या शुक्र अज़ीम का दर्जा हासिल करना है, ये उतना ही मुश्किल है जितना मोहसिनीन का दर्जा हासिल करना मुश्किल है। लेकिन क्या इसका रिज़ल्ट, इसका रिज़ल्ट तो रिसर्च के ज़रिए दिखाया जा चुका है, यानी कि आपको मैं अगर रेफ़र करूं, किताबें हैं 7 Habits ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल, फिर किताब है फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, फिर किताब है योर सेक्रेट सेल्फ, फिर किताब है द स्पीड ऑफ ट्रस्ट, यानी ये किताबें अगर आप देखें इनमें बाकायदा रिसर्च करके ये बताया गया है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में कामयाब लोग और सेटिस्फाइड और खुश लोग, वो लोग जो हुज़्न नहीं करते, वो प्रोएक्टिव लोग होते हैं, और प्रोएक्टिव लोग वो होते हैं जब उनके साथ ज़्यादती होती है तो वो किसी को ब्लेम नहीं देते, बल्कि वो बहुत ही नरमी से और मासूमियत से ये पूछते हैं कि जी हम में ऐसी क्या बुराई थी कि आपने हमें ऐसा कहा या आपने हमारे साथ ये किया, और जब, और वो सिंसियरली ये कहते हैं, वो एक्टिंग नहीं कर रहे होते, और एक दफ़ा जब वो बुराई डिस्कवर कर लें कि इन्होंने इसलिए हमें ऐसा कहा, तो वो उस बुराई को दूर करने में मेहनत करते हैं। ना सिर्फ ये बल्कि जिसने उनको वो बुरा कहा होता है वो उनको भी बताते हैं कि हुजूर आई एम वेरी सॉरी कि आपको मेरी ये बात इतनी बुरी लगी कि आपने मुझे गाली दी, और मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ये अपनी बुराई हटा दूँ और ख़त्म कर दूँ और आइंदा आपको शिकायत का मौका ना मिले। तो ये तो अंग्रेज़ लोग हैं। स्टीफन कवी जो है गुरु, जिसकी किताब मैंने आपको बताई है, वो क्रिश्चियन है, बड़ा सख्त क्रिश्चियन था वो, अब फौत हो चुके हैं, मॉर्मन थे ये। दूसरे जो मैंने आपको बताई है योर सेक्रेट सेल्फ, वो वेन डायर हैं, बड़े सख्त क्रिश्चियन थे वो। इसके अलावा ओशो जो है वो हिंदू था, उसकी भी काफ़ी सारी बातें मैंने आपको बताई हैं। इनमें से कोई भी मुसलमान नहीं था, लेकिन जैसा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक छोटे से जुमले में कहा है, फ़ातिमा ये जानते नहीं हैं। तो इससे ज़्यादा बेहतरीन सबक और मिसाल हमें कोई नहीं चाहिए। हमें दुनिया का कोई मैनेजमेंट का लिटरेचर नहीं ये समझा सकता जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ओजड़ी फेंकने वाले आदमी के हक में उन्होंने हज़रत फातिमा के सामने वकालत की थी। ठीक है जी, तो इसका क्या नतीजा होगा? आपकी अपनी इस्लाह होगी, जिसने गाली दी है उसकी इस्लाह होगी, और तीसरा क्या है कि वो तुम्हारा ऐसा दोस्त बन जाएगा का अन्नहु वलीयुन हमीम, जैसे एक गर्म दिल वाला, एक वार्म हार्टेड दोस्त वो तुम्हारा बन जाएगा। इंशाल्लाह कल इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे कि लोगों को ब्लेम कैसे नहीं देना, और उसमें फिर ये वाली आयत मैं आपको सुनाऊंगी। ये सूरह हामीम सजदा की आयत है और वन ऑफ माय फेवरेट आयत है। वैसे तो कुरान पूरे का पूरा एक अजीम मौजज़ा है, लेकिन ये कैसी आयत है जिसको सुन के इंसान का दिल पिघल जाता है। तो इंशाल्लाह कल का सबक फिर इस आयत से शुरू करेंगे। तब तक के लिए आप सबसे इजाज़त, और हम सब की हिदायत की और एक दूसरे के साथ रابطے में रहने की और कुरान की खातिर और अल्लाह की खातिर एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत की दुआ। आमीन सुम्मा आमीन।